राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 जून 1993 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण 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 नारायण।
तत्व ज्ञान से भी ऊंचा प्रेम तत्व है, वह किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है? क्या प्रेम तत्व, क्या प्रेम तत्व बिना तत्व ज्ञान के भी उपलब्ध हो सकता है?
हो सकता है। तत्व ज्ञान से सुगुणता पड़ती है और तत्व ज्ञान से पहले भी प्रेम हो सकता है, फिर तत्व ज्ञान हो जाए। प्रेम प्राप्ति के लिए अपनापन खास मुख्य है, त्याग है, तपश्चर्या है, संयम है, सब साधन है, परंतु प्रेम के लिए खास अपनापन है, प्रभु के साथ अपनापन। उसकी सिद्धि होती है संसार के साथ अपनापन मिटने से। जैसे मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई ये दृढ़ होने से प्रेम होता है। और जब तक तो दूसरे भी अपने मालूम देते हैं तब तक असली प्रेम जागृत नहीं होता। भगवान के साथ तो संबंध हरेक जोड़ दे भगवान हमारे हैं, पर दूसरे हमारा कोई नहीं है इसमें गलती रहती है। मेरे तो केवल गोपाल दूसरा न कोई, ये अपनापन है, ये खास चीज है। बहुत बातें मैंने सुनी है प्रेम के विषय में, तपस्या आदि की बातें, परंतु संतों के वचनों से, पुस्तकों के पढ़ने से ऐसा बोध हुआ है, कुछ ख्याल हुआ है कि अपनापन दृढ़ता से होगा, मेरे है, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई, ये बात है, केवल भगवान मेरे है और मैं केवल भगवान का ही हूँ। इसमें संसार की सेवा के लिए तो मैं हूँ, परंतु संसार में मैं किसी के लिए नहीं हूँ, मैं खुद। मेरे पास जो शरीर इंद्रियां अंतःकरण है, धन संपत्ति वैभव पद अधिकार जो कुछ है, ये सब दुनिया का ही है। वो सेवा भी उनकी वस्तु उनको देना है, मैं सेवक वैसा नहीं हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल एक। सब कर ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। सबका चंद्र माता पिता आदि सब, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सूरज परिवार आदि बस बताए। इनसा धागा बटोर गए, तोड़े नहीं। तोड़ना क्या, तुम तुम्हारे हम हमारे, तोड़ना होता है। और उठाना का मतलब मैं सबकी सेवा के लिए हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है, ऐसे बटोरना है। और केवल भगवान मेरे हैं, केवल केवल प्रेम हो जाएगा। करके देख ले आप।
कल आपने बतलाया कि मेरे में दोष नहीं है, दोषों को मानना शरीर को अपना मानना है, तो ये बात ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों के लिए ही है या
सब मार्गों के लिए? मैं देखो तो स्वर्ग जाएगा तो भी शरीर छोड़कर जाएगा, सही के सही छोड़ जाएगा,
क्योंकि भक्तों को तो अपने को कुटिल कामी खल नीच पतित आदि अपने आप को मानते हैं।
वे मानते हैं, उनका ऐसा अर्थ नहीं है कुटिल खल कामी है वे। जैसे हमारे शरीर पर थोड़ा दो थोड़ा भी कचरा पड़ जाए कूड़ा करकट तो पता नहीं लगता, परंतु आंख में छोटा सा कण का पड़ जाता तो बहुत बड़ा खटकता है। ऐसे उन संतों का भाव अंतर्गत बहुत निर्मल होता है, उनमें थोड़ा सा कहीं दोष दिख जाता है तो उनको बड़ा भारी दिखता है। मौसम को न कुटल खल कामे, ये बात कही, पर मूल क्या बताया कि जन तनु दियो और चाहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी। किंचित मात्र भी भगवान के संबंध में भूल पड़ती है तो उसी से वो खल और कुटिल कामी है, ऐसा नमक हरामी हो। जिन तनु दियो तो ही बिसरायो, लव निवेश मात्र के भी भगवान से वृत्ति अलग हो जाए तो बड़ा भारी दोष मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा लिखा है योग दर्शन भाष्य में कि चक्षुपात्र कल्पो ही विद्वान। चक्षुपात्र कल्प जब चक्षु में छोड़ा सा भी है वो सुहाता नहीं, उसको बहुत बड़ा दिखता है। विश्वास दिखाते मोह सब को काम है, वे होते नहीं खल काम है और कुटिल नहीं है। धर्म जी ने कहा कि मेरे को कुटिल समझा, इस वास्ते मेरे को साथ नहीं लिया। तो ये वास्तव में कुटिल नहीं है, इस वास्ते भगवान के प्रेम में दूसरे के प्रति जितनी दृष्टि, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। और क्या किंचित मात्र, एक आस रूप एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। अब बात रही भी अपने निर्दोष बताया तो निर्दोष आपका जो स्वरूप है असली ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, तो ईश्वर का अंश है तो ईश्वर जैसे वैसे उसका अंश होगा, बाप के अनुसार ही बेटा होगा। तो ईश्वर में जैसे दोष नहीं, ऐसे मेरा साक्षात ईश्वर है। भगवान कहते मम एव अंश हो जीव लोके जीव भूत मम एव अंश एव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति आदि का मिश्रण नहीं है, मेरा ही अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन ज्ञान स्वरूप और अमल दोष रहित और सुख राशि सुख स्वरूप। तो अमल का तो दोष नहीं है अपने में, ये बात मेरे को बहुत बढ़िया मालूम देती है। मनुष्य जब अपने अमलता का अनुभव कर लेता है कि मेरे में वास्तव में दोष नहीं, तो दोष मिटाने के लिए बड़ा उत्साह आ जाता है, हिम्मत हो जाती है और दोष जल्दी दूर हो जाते हैं। और दोषों को अपने में कायम करके हटाते हैं तो हटते नहीं है, क्योंकि कायम किया उसको हटाते हैं तो हटाने के उद्योग से वे दृढ़ होते हैं। वो मानते हैं कि दृढ़ है इसको हटाना है हटाना है, तो आप अपनी मान्यता से उनको दृढ़ कर रहे हैं। इस वास्ते ये मूल बात है, जैसे शरीर मिलता है छूटता है तो जड़ चीजों का ये कायदा है कि वो मिलता है बिछुड़ता है, तो दो सब के सब ऐसे असत है तो आने जाने वाले हैं, तो आपके स्वरूप में नहीं है, इसका आप अनुभव करें। आप में अगर हो तो सुबह मैंने बताया था ना, अभी आप में काम है, आप में अभी क्रोध है, नहीं है, तो वर्तमान सबका निर्दोष है। ये बात अगर केवल मान भी ले तो कल्याण हो, समझ ले ठीक तरह से गई, ईश्वर के अंश में दोष कैसे होगा। दोष सब प्रकृति के संबंध से होते हैं, इस वास्ते दोष स्वरूप में नहीं है, ये ठीक अनुभव करें। जैसे अब आप में दोष नहीं है, ऐसे गाढ़ नींद में अहम भाव भी नहीं है, अहम भी प्रकृति का ही कार्य है, वो भी नहीं रहता है, लीन हो जाता है, मिटता नहीं है, मिटता है जागृत में अहंकार रहित होने से, नींद में लीन हो जाता है तो उसका भान नहीं होता, तो उस समय भी निर्दोषता का मालूम होता है, अनुभव होता है। जगने पर कहता है कि मैं ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था इसका पता तो था उस समय, तो उसके स्वयं की सत्ता सिद्ध होती है, अपने सिवाय कोई सत्ता नहीं थी, तो अहंकार नहीं, अंतकरण नहीं, इंद्रियां से कुछ नहीं था, तो आपका स्वरूप है उसका विकार रहित स्वरूप का सुषुप्ति में अनुभव सबको होता है। इस अनुभव के आधार पर आप दोष रहित है, सच्ची बात है। अब इसमें शंका उठती हो तो बोलो।
सत्य भाषण करने की विद्या और सत्संग करने की विद्या सिखाइए।
अपने एक सत्य की शरण से मुक्ति ही श्री शेठ जी का लेख है, वो तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में था, आज के भाग किसमें पता नहीं, कई टुकड़े किए हैं, अलग मिलता है सत्य की शरण से मुक्ति, छोटा सा कुछ तो अलग मिलता है, उसमें 8 बातें लिखी है, उन बातों को याद कर लो और सावधान रहो तो सत्य बोलने की विद्या आ जाएगी, उनको समझो और सावधान रहो, उनमें निगरानी रखो, उसका मनन करो, सत्य बोलने आ जाएगी। और सत्संग करने की विद्या है, जो कोई कह रहा है सुना रहा है तो उसके भाव की तरफ एकदम दृष्टि रखो, उन्मुख हो जाओ, उस ईश्वर दूसरी बात कोई सुहावे नहीं, कोई दूसरा कर दे तो बड़ा जो मालूम देगा, कोई मानो हमारा बड़ा भारी नुकसान कर रहा है, ऐसे देखो उनको सुनो, और उन सुने देने में ये अपने काम में लाना है, निषेध करे तो इसको छोड़ना है, ऐसा पक्का साथ साथ निश्चय करते रहो, और जो अच्छी बातें हैं उनका मनन याद करते रहो, भूल न जाऊं कभी, ऐसे सुनो तत्परता से। जैसे आपका किसी के साथ बैर है और आप एक गली में जा रहे हैं, घाम तप रहा है, हवा नहीं है, परंतु आपने सुना कि हमारी बात कर रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं अपने, उस बात को आप जैसे सुनते हो ऐसे सुनो सत्संग, ये तुमने कहा, तुमने ये बोला, ये कहा, ये कहा, खूब याद कर लेते हैं, इस तरह से सत्संग की बात खूब याद करो, वैसे ही आचरण लाओ, तो सत्संग की बात काम लाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, काम में लाने लगे तो 1-2-4 दिन में कर दे, और पूछ लो और कुछ नहीं, बस ठीक है ऐसे है, ये ज्यादा बात नहीं है, थोड़ी बात है, तो इस तरह से सुनो और काम में लाओ, ये सुनने का तरीका है, सत्संग करने का तरीका है, ये दोनों तरीका है, सत्संग का, सत्य भाषण का। सत्य भाषण की सत्य के शरण से मुक्ति लेख है, उस लेख को पढ़ो, उसमें 8 बातें हैं, भविष्य की बात नहीं करना है, हंसी दिल की नहीं करना है, और झूठ बोलना ही नहीं है, जबान पर ठीक कंट्रोल रखना है, अरे थोड़ा उठ रही 8 बज गई, जगदन ऊपर आ गया, ये आ जाती पता ही नहीं है, तो ऐसा होश रखो, बोलो तो शब्द में टोल टोल कर बोलो और कम बोलो, ज्यादा बोलने से झूठ निकल जाता है, तो कम बोलो उसमें, और ख्याल रखो, ऐसी सावधानी रखो, भविष्य की क्रिया में हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं, ऐसा करने का विचार है, तो विचार का अर्थ नहीं है ढीलाई है, सत्य की रक्षा के लिए कहते हैं, पर ऐसा करेंगे तो उस करने में पूरी योजना वैसा ही करना है, उसका पालन है, स्वीकार है प्रतिपालन, स्वीकार किया का पालन करना, ये सत्य या विषय है, तत्व विवेचने के 18वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है, वो जहाँ असत्यादि का वर्ण है, वर्ण धर्मों का वहाँ है, तो वो आप देखें और सत्य के सन से मुक्ति देखें।
हमारे हिंदू भाई बहन अपने बच्चों को हिंदू संस्कृति का विनाश करने वाली अंग्रेजी शिक्षा ही पढ़ाते हैं, शहरों में मोहल्ले मोहल्ले में छोटे गांव में अंग्रेजी स्कूल अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा जोर से प्रचार हो रहा है, कृपा करके इसको रोकने का उपाय बतावें।
रोकना के हिंदी पढ़ाओ, विद्यालय चलाने वालों को ऐसा करना चाहिए कि भाई अपनी हिंदी पढ़ाओ, गीता जी का रामायण का घंटा रखो, रामायण गीता का ये दो ग्रंथ बहुत अच्छे आपकी संस्कृति की रक्षा के लिए, लोक और परलोक के कल्याण के लिए, तो ये पाठशालाओं में रखो। कलकत्ते में मैं था, वहाँ कहा कि ये हिंदी स्कूल है बहुत बढ़िया, अंग्रेजी रीति से इसमें शिक्षा दी जाएगी, ये मानवा हुई है, आदर्श आपके अंग्रेजी हो गई, आपके मन में जच गई कि अपने स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ये ईसाई स्कूल है उसमें पढ़ाई अच्छी होती है, और ईसाई स्कूलों में नियम बना लिया कि हिंदी बोला जो उस पर जुर्माना न होता है, हिंदी बोल नहीं सकते ईसाई स्कूलों में बंद कर दिया जाता है, उसमें आप पढ़ा कर प्यार करते हो, चाहते हो बालकों ठीक हो जाए, रुपया कमाने के लिए तो लगन है, पर बालकों के सुधार के लिए लगन नहीं है, रुपये बहुत इकट्ठे हो जाए, थोड़ा पागल हो जाए तो क्या काम आवेगा रुपया, और अच्छे पुरुष बनेंगे तो अच्छाई के साथ रुपये आप साफ आते हैं। हमारी मारवाड़ी कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत अगर कपूत है तो धन क्यों नष्ट कर देगा वो, अगर सपूत है तो संचय जरूर आप ही कमा लेगा, एक बात याद आ गई, आप क्षमा करना भाई, आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, हमारे गुरु महाराज थे वो ये बोला करते, ये पूत सपूत तो क्यों धन संसार, पूत कपूत तो क्यों, रुपये लेते थे, भेंट पूजा ले लेते लगा देते, और एक तो ये बोलते एक आई बला डी चला है, आई बला डी चला है, महाराज का महाराज का मेला करने के लिए पास में नहीं थे मेरे पैसे, उधार दे दिया, पैसे रखते थे, बोलते करते ही ऐसे पैसा ले लेते, भेंट ले लेते, लगाते उसे अभी नहीं थे, किसी की जरूरत थी उसको दे देते, उधार देते थे, ब्याज लेते नहीं, मेरे सामने ऐसी बात हुई है, 500 रुपये में बहुत बढ़िया ब्याह हो गया, उसको रुपये दे दिए, उधार दे दिया, वो लड़का मर गया, तो कैसे करें, मेरे को भोला भोला कर देंगे, समझता नहीं है, विशेष समझदार नहीं है, भोला है, अब भी ऐसा ही करते हैं, हमारे खिताब है, हमारी पदवी है ऐसी भोला है, तो मैंने महाराज से पूछा कि महाराज मेरी चिंता तो नहीं है आपको कि भोला भोला है, एक चेला और गुगुल भाई है ही, एक ही है, चिंता नहीं है, फिर नहीं है, मेरे संतोष है उसी, अब आप क्या बात, तो ऐसे संतों में देखा पैसा रखते हैं, भेंट ले लेते हैं, दे देते हैं, चला देते हैं, बस किसी आवश्यक में कर दिया, काम धंधा कर देते, खेत में खराबी में वो बुखार आया हुआ है, तो चुस्ती चुन चुन लेते, फिर बुखार में पड़े धान खराब हो जाए। ना सके, हमारे में वो गुण नहीं है जो हमारा में चाहिए।
कहते हैं कि बीच में वो माइक बिजली चली गई तो वो,
और भाई महाराज ऐसे थे तो ये श्रद्धा विश्वास आती है कि मेरे गुरु जी की बात कहता हूँ तो अपनी आत्मश्लाघा होती है इसमें, विश्वास से संकोच होता है। पर वैसे संत थे जरूर। वृद्धावस्था हो गई थी सातवें मास में, महाराज मैं रहूं आज यहीं कि नहीं तो तुम जाओ पढ़, पढ़ने के भेज दिया, नहीं तो हरे बूढ़े बड़े साल भी सेवा में रहे अकेले रहे महाराज, मेरे को पढ़ने के लिए भेज दिया। विभूति की बात है, किसी के ही दुख में पड़ जाती, किसी के दुख हो गया कहीं बेचारा दुख हो गया ऐसा हो गया, और लोग बड़ी भावना रखते थे, थोड़ा ज्योतिष भी जानते थे, कोई महाराज कहाँ बढ़ घर बढ़ाऊ तो यहाँ बढ़ाना, कब जाओ महाराज अमुक समय उस समय चला गया, लोगों की बड़ी भावना थी। महाराज मूड बता दिया मारने के, श्रोते भी देखते थे ये भी देखते थे, उस बराबर नहीं ऐसे थे तो ऐसे होते हैं हर जी, आप समझो भी होते तो हमारे थे गुरु बना जैसे।
ब्राह्मण के लिए संध्या पूजा करना अनिवार्य है, परंतु जो संस्कृत नहीं पढ़ा है वह संध्या किस प्रकार से करे?
नहीं संध्या सीख लो, संस्कृत पढ़ने से संस्कृत आती है तो संध्या सीखने से आ जाएगी संध्या। तीन दिन संध्या नहीं करे, संध्या हीनो दिन त्रयम सूर्योस बहिष्कार्य सर्वस्माद विश्वकर्मणा, तीन दिन संध्या नहीं करे तो ब्राह्मणों को पंक्ति में नहीं बैठाना चाहिए, निकाल जाने का सूर्योस बहिष्कार्य, संध्या भी करनी चाहिए। सीख लो संस्कृत सीखने तो आती है, संध्या करने थोड़े से मंत्र सीख लो, गायत्री सीख लो, शुद्ध कर लो पढ़ने से करो, और संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? पढ़ाते नहीं, अंग्रेजी तो पढ़ाते नहीं, संस्कृत पढ़ाते ही नहीं, खास ब्राह्मणों की विद्या है संस्कृत, घर की विद्या है, पढ़ानी चाहिए।
यदि दशमी में एकादशी लग जाए तो क्या दोनों दिन अन्न नहीं लेना चाहिए? यदि दशमी में एकादशी लग जाए,
दशमी वृद्धा मानो एकादशी का व्रत करते हैं उसमें दसवीं आ जाए तो दसवीं विद्या नहीं करनी चाहिए। वैष्णवों को शुद्ध एकादशी करनी, नारदपुरा माता है वो एक मोहिनी नाम करके हुई है, उसने ऐसा कहा, वो मोहिनी नाम की एक एकादशी भी है तो वो दसवीं विद्या होती है तो उसको फल मिल जाता है, करने वालों को नहीं मिलता ऐसा उसमें आया पुराण। इसमें दसवीं विद्या नहीं करनी चाहिए, द्वादशी की घड़ियां आनी चाहिए, इस बात से कई जगह एकादशी व्रत है, कई जगह द्वादशी व्रत, नाम ही द्वादशी व्रत है उसका, द्वादशी व्रत तो व्रत में द्वादशी घड़ी आनी चाहिए या दसवीं घड़ी आनी चाहिए, तो ब्राह्मण बता देंगे वैष्णव का और स्मार्तों को, मतलब स्मार्त उसको नहीं मानते वैष्णव मानते हैं।
एकादशी को पिताजी का श्राद्ध आता है उस दिन फलाहार करना चाहिए कि अन्न का भोजन कराना चाहिए, जबकि पिताजी हमेशा एकादशी करते थे?
देखो भाई सेठ जी के पिता का दिन एकादशी है, एकादशी में श्राद्ध होता है तो बताओ भी सेठ कैसे करते थे, बताओ सेठ जी जानने वाले, सत्यनारायण जी है क्या? शेर जी क्या करते थे एकादशी का, था उनका एकादशी पिता का दिन, मेरे मतलब सिद्ध करते थे ऐसा, हमें याद नहीं है।
ब्राह्मणों को अन्नाहार करवाते थे कि फलाहार करवाते थे?
ये बात बताओ भाई, इतने बैठे हो एकादशी का श्राद्ध था ये तो मेरे को याद है, परंतु वो ख्याल नहीं है, मेरी समझे तो अनार कराते थे, तो पूछ लेना भाई, और ब्राह्मणों से पूछो कर्मकांड की विधि विशेष, ब्राह्मणों से पूछो, मैंने पढ़ा तो है परंतु मेरा विषय नहीं है, जैसे भूगोल है, खगोल है और जैसे कर्मकांड की विषय है, इसको मैंने रुचि से नहीं पढ़ा है। पारमार्थिक उन्नति करने वाला कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ये तीन खास है, तो इसमें तो मेरी बड़ी रुचि रही है, अब भी है। तो ये बातें तो याद है, कर्मकांड की बातें याद नहीं, पूछोगे ब्राह्मण था।
84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य का जीवन सब पाप दूर करने के लिए मिलता है, तो कभी बच्चे जन्म लेते ही तुरंत मर जाते हैं, तो किस पाप को भोगते हैं
वो? पाप जन्म लेना वही पाप भोगते हैं, वो भी मन पुरुषों की तरह ही है। जब तक विकास नहीं होता है, विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक पशु की तरह ही है वो मनुष्य जन्म नहीं माना जाता है। ऐसा बारी निकल जाए भले मनुष्य की, मनुष्य के वास्तव में कर्तव्य का ज्ञान होने से ही मनुष्य जन्म है, विवेक की प्रधानता है मनुष्य जन्म।
लिखते हैं कि मनुष्य जन्म तो सब पाप भोग लेने के बाद मिलता है,
मैं ऐसी बात है ही नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। और सब जो नहीं भोगने के बाद मनुष्य में तो कायदा है, परंतु प्रभु बीच में भी मनुष्य देते हैं, कब हो करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु बीच में भी मनुष्य जन्म का मौका देते हैं, तुम तो मौका उद्धार कर दो कृपा करके। 84 लाख जोड़ी भूलने के बीच में एक बार दो बार मौका दीजिए।
आप इच्छाओं का त्याग करने की बात कहते हैं, तो अगर किसी चीज की इच्छा ही नहीं होगी तो आदमी कर्म ही क्यों करेगा?
यही तो बात है, इच्छा से ही करते हैं, तो इच्छा होने से कर्म करना तो पशुता है, मनुपना है ही नहीं। मनुष्य पढ़ना तो दूसरों के हित के लिए है, दो काम खास है मनुष्य के, एक तो भगवान को याद रखना और एक दुनिया की सेवा करना, अपने लिए कर्म करना ही नहीं, दूसरों के हित के लिए ही करना। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो कर्म में सबका हित करना, भगवान को याद करना, दो खास मनुष्यता है कि स्वार्थ नहीं तो क्यों करे, तो ये तो पशुता है। स्वार्थ में लाकर दो सबकी स्थूल नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करें स्वार्थ में तो सकल माए सब कर कदमी नहीं रखते, हर एक काम धर्म को सामने रखकर करते हो, वो तो जंगल में भटक रहे हो जगह के डर में। और दुर्योधन परवाह ही नहीं करता धर्म कर्म की, वो राज्य करता है, तो भगवान के न्याय है कि नहीं, भगवान को एक इंसाफ होता है कि नहीं? धर्मात्मा तो दुख पावे, पापा तो मौज करे, ये क्या है? जो दूर भाषा में कहते रुड़िया रहे हो, और रुड़िया रहे हो तो ऐसा क्यों है? तो जो मैंने पूछा तो महाराज जी से मैं कहा कि देवी तेरे भी शंका हो गई, बड़ी भारी आश्चर्य की बात, मैं धर्म का पालन करता हूँ तो मनुष्य का कर्तव्य है, मैं सुख के धर्म पालन करता हूँ, राज्य के लिए पालन करता हूँ, ये मनुष्य का नहीं है, धर्म पालन मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य है तो विवेक प्रदान दिया भगवान ने, उस विवेक के अनुसार करना चाहिए वो करना है, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है। जो स्वार्थ के काम करते हैं वे धर्म के तत्व को समझते ही नहीं, वे काम धर्म वो तो स्वार्थ है, धर्म के तत्व कैसे समझेगा वो क्या समझे? ऐसा बोलिए, बड़ा सुंदर द्रौपदी का युधिष्ठिर का संवाद है। तो धर्म का पालन करना है कर्तव्य समझे, मनुष्यता के ध्यान नाते धन के लिए संपत्ति के लिए मान बढ़ाई के लिए नहीं, उसकी बिक्री नहीं करना है, धर्म की बिक्री नहीं करना, पैसों में ना मान बढ़ाई में बिक्री नहीं करना है।
एक पापी दुराचारी या दुष्ट व्यक्ति को उसके पापों का दंड हमें देना चाहिए या भगवान पर छोड़ देना चाहिए?
आप मन तो राज दो, आपको दंड देने का अधिकार नहीं है, दंड राज देवे और परलोक में भगवान देवे। आप शासक हो तो आपका काम हो तो आपको दंड देना चाहिए पापी को, आप शिकायत कर सकते हो आप में नहीं, परंतु अराजकता हो जाए, राज कोई न्याय नहीं करता, कोई ख्याल ही नहीं करता, उस समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों का क्षात्र धर्म होता है, तलवार लेकर लेना चाहिए दूसरों के सामने, अपने इज्जत की रक्षा, बहन बेटी की रक्षा, धन की रक्षा, जमीन की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए क्षात्र धर्म क्षत्रिय जैसे शासन करता है ऐसे करना चाहिए। चारों का क्षात्र धर्म होता है तलवार लेकर लेना चाहिए दूसरों के सामने, अपने इज्जत की रक्षा, बहन बेटी की रक्षा, धन की रक्षा, जमीन की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए क्षात्र धर्म क्षत्रिय जैसे शासन करता है ऐसे करना चाहिए। ऐसे शासन करते हुए कोई मर जाए तो पाप नहीं लगता उसका। आपका मायांतम अन्या देवा आपका ही है। हम स्त्रियों को ले जाते हैं, धन ले जाते हैं, रुख लेते हैं, आग लगाते हैं, जहर दे देते हैं उनको, तो आते हो तो चाहे वेदांत पारगमी ब्राह्मण क्यों हो, अन्या देव विचारी अविचारी अन्यास नाश करने के लिए चाहिए। क्षत्र धर्म होता है सबका, सब क्षत्रिय है स्त्री पुरुष सब, अपने धन धर्म की रक्षा के लिए। अराजकता राज की सुनाई नहीं करता तो राज कुछ है ही जो भ्रष्ट हो गया, राज है ही जीव प्रदर्शन भूप प्रदर्शन। कल युग में राजा होंगे प्रजा को चूसने वाले, धन खा रहे उनकी सब उसको कर रहे, रक्षा करना काम नहीं होगा उनका, ऐसे राजा होंगे। ऐसे समय में सबका खात्र धर्म है तो अपनी रक्षा के लिए सबको तैयार रहना चाहिए, बड़े मजबूत बनना चाहिए, कभी कायर नहीं। शस्त्र से सीखना है, राशि सीखना है, ये सब सीखना चाहिए।
सुख और आनंद में क्या फर्क है?
सुख के जोड़ा दुख है, आनंद के जोड़ा दुख नहीं है। आनंद वो है जो सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। सुख तो उसका नाम है जो दुख का बीज होता है, दुख का बीज सुख ही है। सुख लोलुपता से ही दुख करते हैं। अर्जुन ने पूछा है कि किससे प्रेरित होकर मन पाप करता है, अनुचर नहीं चाहता पाप करना, फिर कौन पाप करा लेता है? तो भगवान ने काम है सको, ये सुखों की इच्छा है, कामना है, भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, ये पाप कराती है। कामना पाप कराती है, लोग समझे कामना से काम धंधा होता है, काम धंधा नहीं होता, पाप होता है, अन्याय होता है, चोरी डकैती झूठ कपट जासादी देवारी विश्वासघात ये होते हैं कामना से। कामना से कर्तव्य पालन थोड़ी होता है, कर्तव्य पालन शुद्ध होता है, वो कर्तव्य होता है। कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, जो आप कर सकते हो जरूर करना चाहिए उसका नाम कर्तव्य होता है। धन आदि के लिए कर्तव्य थोड़े है, लोग कहते हम तो कर्म योगी है, कर्म योगी नहीं कर्मी है, कर्म कर्म नहीं है, कर्म कर्म करने वाले कर्मी। नहीं तो हम तो कर्म योगी है, कर्म योगी कहा है आप? लोगों के इष्ट होता है भगवान का अथवा होता है धर्म का। आज लोगों के इष्ट झूठ बेईमानी का, हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे खोटा दही खाना, हे भेजा खोटा पूजा, आप धोखेबाजी, ये इष्ट देव है, इसके बिना काम नहीं चलता, भगवान बिना चलता है काम, पर ये झूठ गर्व बिना नहीं चलता। मेरे को तो कह भी देते हैं बाबा जी आप ही दुकान पर बैठ कर पता लगता, नहीं कर सकते धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। इष्ट देव झूठ कपट बेईमानी को इष्ट देव है, हे झूठ कपट देवता, हे बेईमानी देवता, हे विश्वासघात देवता, हमारा पालन करना भाई, उसे पालन होता है, विश्वास है विश्वास, झूठ बिना होता ही नहीं, झूठ बिना धर्म नहीं, कूड़ बिना व्यापार नहीं। झूठ का लेवल होता ही अस्तित्व सत्य को, सत्य के शरण से मुक्ति हो जाए, व्यापार सुधार की आवश्यकता, व्यापार से मुक्ति तत्व पहले भाग में दो लेख ऊपर हो, व्यापार से मुक्ति, व्यापार सुधार की आवश्यकता दो लेख, झूठ का पढ़ लीजिए। आज लोगों जस्ती नहीं बात बैठती नहीं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं मतलब पीते हैं तो छूटता नहीं हमारे से, पर नहीं बीड़ी सिगरेट पीता वो बीड़ी सिगरेट पी नहीं सकता, राम में झूठ बोलता है सत्य होता है, पालन नहीं होता। सत्य तो पालन हो सकता है, झूठ पालन करने वाला भी सत्य बोल सकता है, पर सत्य बोलने वाला झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलना कहा जाए तुम्हारे को 5 रुपया देते हैं, सत्य गवाह दे सत्य गवाह देगा, सत्य बोलेगा झूठी गवाह दे दो 100 रुपया देंगे, सब लोग थूके अपने रुपये पर झूठ बोलेंगे। तो सत्य बोलना सरल है, झूठ बोलना कठिन है। कई जगह रख लगानी पड़ती सत्य की कुछ सतराई करनी पड़ती, फिर भी झूठ कहीं चलते नहीं, कहीं कहीं चूक जाता है और कहते हैं देखो सत्य कहते हैं, हम सत्य कहते हैं, तो सत्य की चोरी में झूठ चलता है। ऐसा कहते हो हम झूठ बोलते हैं तो झूठ की आवश्यकता है क्या सत्य के लिए?
सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, ये बात हिंदू धर्म में विशेषता से बतलाई जाती है। इसमें भगवान को प्राप्त करने की अच्छी अच्छी युक्तियां हैं, तो फिर अन्य धर्मों को क्यों बनाया गया?
बनाया गया मनुष्य ने किया है, बनाया थोड़ी है। देखो एक मार्ग की बात बता रहा आपको, दुनिया में एक हिंदू धर्म है, एक मुसलमान धर्म है, एक ईसाई धर्म है, बहुत व्यापक ये तीन है, और यहूदी है और पारसी है, दो धर्म और है, 5 है। तो ईसाइयों में ईसा है मूल में, मुसलमानों में मोहम्मद है, हिंदू धर्म में आप नहीं बता सकते अमुक पुरुष है। भगवान के धर्म संस्थापनार्था है, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार देते हैं, धर्म पैदा करने के लिए नहीं। भाई इस मनुष्य बना हुआ है, एक लाठी झाड़ बना दे धर्म। मुसलमान का धर्म में कुरान में लिख दिया कि जो मूर्ति पूजा करते हो उनको मार दो। अब मूर्ति पूजा से क्या हानि होती तुम्हारी, और क्या तुम्हारे से लूट लेते हैं वे, ये लिख दिया।
इसमें आगे ये भी पूछा है कि वो मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ते हैं तो इसमें परमात्मा हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है?
परमात्मा इसे मूर्ति की पूजा करना आपका काम है, भगवान का थोड़ा ही है काम। एक बात बताओ, हम कर्णवास में सत्संग करने गए थे, वहां भाई जी हनुमान प्रसाद जी का पत्र आया था शेर जी के प्रति, वो शेर जी को गुरु मंत्र जय दयालु देवा परम देव परम देव परम देव देवा। तो उनको पूछा कहा कि मैं विचार करता हूँ कि अब छोड़ भजन जारी केवल भजन में लग जाऊँ, ये कल्याण का काम नहीं करूंगा, कहते भाई ये करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि सद्भावों का प्रचार, भगवान का प्रचार, भगवान की इच्छा से भगवान के करने से होगा, हम क्या कर देंगे, क्या हमारे में ताकत है ऐसी? तो उसका पत्र लिखा था, मेरे को याद है, कहा कि भगवान की भक्ति का प्रचार करना भगवान का काम नहीं है, भक्तों का काम है। ऐसे मंदिरों का पूजन करना रक्षा करना भक्तों का काम है, भगवान का काम नहीं है। ये भक्ति का प्रचार भक्तों का काम है, इस वास्ते आप लोगों को काम ये करना चाहिए। भगवान क्यों नहीं, तो भगवान क्यों नहीं करते? अरे संत महात्मा पुरुष है, वे भी परवाह नहीं करते तो भगवान परवाह करेंगे मूर्ति पूजा की? क्या भगवान की कोई कमी आ जाएगी? ये अपने स्वार्थ ही कहे, शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, भगवानों को देना चाहिए। ईसा क्रोश पर चढ़ गए, रक्षा करनी चाहिए अपने, मंसूर जहर खा गए मर गए, वे अपने शरीर की परवाह नहीं करते। जो भगते हुए भी तो भगवान अपनी मूर्ति की परवाह करने लगे, तो भगवान भगवान नहीं है, ये तो भक्तों का काम है। आप पूजन करो रक्षा करो सब, ये भगवान
चिन्मयता में व ज्ञान में क्या अंतर है?
एक ही बात है, चिन्मयता तो स्वरूप से है और ज्ञान उसे चिन्मयता आ जाती है, जड़ता मिट जाती है। जड़ता प्रकृति का काम है, चिन्मयता चेतन तत्व का बात है।
दिव्य दृष्टि व ज्ञान दृष्टि में क्या अंतर है? आप जैसे संतों के रहते हैं अभी भी क्या किसी को दिव्य दृष्टि दी जा सकती है?
भाई हमारे पास तो है नहीं, राम जी के पास में थी, वो संजय को दी थी, तो संजय उस दृष्टि से देखते। इस वास्ते अंत में संजय ने व्यास प्रसाद सुतवान कहा, भगवान की मत प्रसाद तत् प्रसाद में अच्छे अर्जुन का तत् आपके प्रसाद कृपा से। संजय कहते मैं आपका क्या धर्म, मेरे गुरु जी ने व्यास प्रसाद सुतवान, तो व्यास ने गुरु जी से ली थी, हमारे जैसे यात्री नहीं कहा देंगे क्या, खुद ही जान रहे हमारे बुद्धि से है ही नहीं। ज्ञान दृष्टि सबको मिल सकती है, दृष्टि हरे को नहीं मिलती। नवेद क्रिया भेद तपो भी रुक गयी एवं रूपा सख्य अहंगे दृष्टुम तुदन्य न करो, तुम्हारे सर कोई देख रूपा। अरे भगवान ने अर्जुन देख पाए, अर्जुन के मैं महाराज आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने पश्चिम पार्थ रूपाणे कृष्ण गोस्वामी ते रूपम आपके रूप को देखना चाहता हूँ, तो पश्चिम पार्थ रूपाणे सत्सो तब भगवान ने कहता नंदु माम सके से मने नहीं चक्षु सा, इन चक्षु से नहीं देख सकता मेरे को चक्षु चाहते हो दिव्य चक्षु देता हूँ, अब देख सब देख पश्चिम देव देव। तो भगवान ने चक्षु को दिव्य चक्षु दी, तीन टाइप चक्षु है, चर्म चक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु हरे को मिल सकता है, दिव्य हरे को नहीं मिलती, ज्ञान चक्षु कल्याण हो जाता है, वो सबको मिल सकता है। मेरी धारणा सब भाई बहन तत्व ज्ञान हो सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान तत्व सबको मिल सकता है। दिव्य दृष्टि से कोई समर्थ को नहीं चल पाए, भगवान दे सकते हैं, अथवा वेद व्यास जैसे अधिकारी पुरुष हो कारक पुरुष हो वो दे सकते हैं, और दिव्य दृष्टि का सामर्थ्य नहीं।
पीपल का वृक्ष पवित्र है, फिर भी इसको घर में निषेध क्यों माना गया? पीपल का वृक्ष पवित्र है लेकिन इसको घर में निषेध क्यों माना गया?
निषेध नहीं है, पीपल एक शुद्ध वृक्ष है, वो घर में नहीं लगाना चाहिए, क्यों उतनी पवित्रता नहीं रहती। इस वास्ते रविवार के दिन जब भी नहीं तुलसी को नहीं लगाना चाहिए, तुलसी घर में रखने की आज्ञा होती है। पीपल की छाया जहाँ तक बनती है वहाँ तक अपने गृहस्थ नहीं रहना चाहिए, उसकी शुद्धि पवित्रता का गुरु इस वास्ते कहा है, पर निषेध का असर भी नहीं हो ये बात तो हमें याद नहीं है। प्राय घरों में पीपल लगाते नहीं है, पीपल का स्वभाव है ये माठा पर पत्थरों पर ईट चूने पर ऊपर ऊपर लागले बने, इनका वो पक्षी बीज खाते हैं, पक्षी के बीज में बीज होता है वो उगता है और पीपल का थड़ा लगाया जाता है।
रुद्राक्ष का क्या महत्व है?
महत्व भगवान शंकर राजी होते हैं, शंकर गणेश और शक्ति इन तीनों के बीच हो सकता है, जिसमें शक्ति के लिए मूंगों की माला भी है, भगवान शंकर के गणेश जी के लिए रुद्राक्ष की माला है, वैष्णवों के लिए तुलसी की माला है, जो भगवान के भक्त है उनके लिए। तो ये रुद्राक्ष भगवान की साफ शंकर की आंखें हैं, ये नेपाल में वो थोड़ी दूर में इसे वृक्ष होते हैं रुद्राक्ष के, सब जगह नहीं होते, बहुत जगह लगते नहीं है। इसकी मणिया है, ये मणिया होते हैं जैसे गोल गोल, तो उसके एक फल होता है उसमें ऊपर गूदा होता है, वो छोकरे खाते भी है, ये विष्णी गुठली है, जैसे बोर होता है बोरिये के बीच में गुठली होती है, ऐसे गुठली है धागे वाले छेद सहित, छेद बड़ा नहीं पड़ता तो मोटा तो बनाते हैं, मेन छेद होता है उसमें रुद्राक्ष
होता है, अपने आप तो हरिद्वार में काफी कई गुंठे हैं,
बहुत बारीक ऊपर वाली कोई बात नहीं है, वास्तव शैवों के लिए है, खास शैव है गान पक है साख तो है वैष्णव तुलसी।
स्त्री तथा शूद्र को जब तक तीर्थ यात्रा मंत्र सिद्धि संन्यास देवाराधन आदि करने चाहिए या नहीं?
ये कहीं करना है कहीं नहीं, तीर्थ यात्रा करो देवाराधन करो
मंत्र सिद्धि
मंत्र वो अनुष्ठियों के लिए वो करो, जिन्हें वो लेना गायत्री मंत्र अपना ये निषेध है, ये निषेध में लोग समझे हमारा अपमान किया, अरे तुमको छूट दी है, पति के दो जने होती है पति करता है उसमें आधा भाग आपको मिल जाता है मुफ्त में, आपको करना ही नहीं पड़ता। स्त्री पाप करे उसका भाग आधा मिलता है पति को, पति पुण्य करे आधा भाग मिलता है पत्नी को, अब कहते हम ही बरोबर है तो बरोबर हो जाओ, महान नटराज है, समझते है नहीं, सास लोग जान रहे।
संन्यास
संन्यास लेने के लिए भी निषेध है, स्त्री सूत्रों के लिए पांच बातें निषेध होती है। परंतु कई वर्ज धर्म है, कलयुग में क्या क्या नहीं करना चाहिए ऐसा मनुस्मृति में और भी स्मृति में धर्म आता है। माताओं के सूत्रों के लिए संन्यास निषेध का, भजन श्रवण करो, शादी वगैरह करके करो, कोई पता नहीं, संन्यास विधिवत नहीं। उसमें लिंग संन्यास अलिंग संन्यास है, तो अलिंग संन्यास के कुल है।
गीता रामायण आदि पढ़ना,
ये पढ़ो, गीता है, रामायण है, ये स्त्रियाँ सूत्र सब पढ़ो, इसका शास्त्रार्थ हुआ तो आया ऋषिकेश में। कर्पाती जी महाराज का मालवीय जी का, मदन मोहन मालवीय का, तो उसके बीच में शेर जयदयाल जी को मध्यस्थ बनाया। शेर ने कहा मैं मध्यस्थ नहीं बनू, आप पंडित हो, ब्राह्मण हो, मैं तो एक वैश्य बालक हूँ। तो सौगंध करा दी कि तुम्हें मिलना पड़े, तो बीच में हुए तो बोलो क्या बात है। तो शेर जी ने कहा भाई स्त्री सूत्रों के नहीं पढ़ना चाहिए आता है, पढ़ना चाहिए, दोनों बातें आती है, तो दोनों बातें आने पर आजकल युग में स्त्री सूत्रों को गीता आदि पढ़ने की आज्ञा देनी चाहिए। ये कह दिया जाता है, कृष्ण जी बोले हमने तो ठीक है गीता की चीज़ लिख दिया है कि स्त्री पुत्र सब पढ़ सकते हैं, हम तो कहते हम तो लिख दिया पहले ही क्या किया।
नीची जाति वालों को गीता रामायण भागवत पठन पाठन का अधिकारी माना जाए या नहीं?
तो अधिकारी में मन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, मंदिरों में नहीं जा सकते। अरे बाप दादा गए नहीं, तुम कोई गया नहीं, तुम जाओगे नहीं, कितना के रामायण हिंदू धर्म में करने वाले हमारे सब गीता पढ़ते हैं क्या, रामायण पढ़ते हैं क्या, जिनको अधिकार दे पढ़ते नहीं, और नीच जाति पढ़ेगा क्या पढ़ेगा।
इनको सत्संग में आना चाहिए नहीं?
सत्संग जरूर करना चाहिए सबको, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्य जो लाइजन हो, कोई हो, सत्संग करने का सबको लाभ होता है, मुसलमानों को भी होता है। हमारे सरदार सर में अभी सत्संग हुआ था ना, सुजानगढ़ में
पधारे
थे, तो मुसलमान आए, वो मुसलमान ही आएगा, हम ही सुनेंगे। अरे उनके ब्याह था, मेरे को ले गए वो मुसलमान, चलो आपको, और मैं क्या करूँगा, हमारे पड़ हो गया, भाई हमारे क्या पड़ी, नहीं हम मानते चलो।
गंगाधर में गया था, पहले आपका
28 में चतुर्मास था, गए हमारे को बुलाते हैं, तो सत्संग उनको करना चाहिए। मुसलमान उसमें कृष्णगढ़ में चतुर्मास हुआ था, मुसलमान था तो गीता रखता, गीता कुछ याद नहीं थी, गीता रखता था, गीता पढ़ता था।
यहाँ भी मुसलमान भाई सुनते हैं?
हाँ तो सुनते हैं, खूब सुनना चाहिए, यहाँ है कोई बैठे बहुत अच्छे, जरूर सुनना चाहिए, हमारे सुनना चाहिए। वहाँ पहले पुराने जमाने 2000 से पहले गोविंद भवन में कथा करता था, ईरान के मुसलमान जाते थे हमारे पास आए हुए, सत्संग सुनते थे। सत्संग सुनने का सबको अधिकार है, वो पालन करने का, उद्धार करने का, कल्याण करने का, परमात्मा की प्राप्ति का सबको अधिकार है। अरे माँ की गोदी में बैठने सब बच्चों का अधिकार है, भगवान के सब बच्चे ही हैं, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो।
क्या हनुमान चालीसा पाठ करने से हनुमान जी या भगवान राम के दर्शन हो सकते हैं?
भाई हो सकते हैं, अन्य निश्चा देना पुकार से रोना देना गजेंद्र ने सोन्तस्थरस्तुर्बले निगृहीत आर्तो दृष्ट्वा गंगोत्मति हरिं खपात चक्रम उत्क्षिप्य सान्मुज करम गिरमाह कृष्णात नारायण अखिल गुरु भगवान हे नारायण हे अखिल गुरु, ऐसे पुकार के भगवान आगे प्रकट हो गया रक्षा कर दी। तो आप मनुष्यों कहते गजेंद्र को भी अधिकार है, भगवान को पुकारने सबको अधिकार है, कोई क्यों नो, और भगवान तो सबके माँ बाप है, हम आपस में दो हैं, लड़का लड़की सब अलग अलग होते हैं, माँ बाप तो एक ही होते, भगवान तो एक हमारे परम पिता परमेश्वर। मॉन्यूमेंट है हो गया, और पूछो भाई कोई बात पूछो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरे को संतों से विलक्षण विलक्षण बातें मिली है। शास्त्रों में अधिकारी बताते हैं, भक्ति का अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी है, योग का अधिकारी है, ऐसे ग्रंथों के अधिकारी है, ब्रह्मसूत्र के अधिकारी है, न्याय के अधिकारी है, विशेषज्ञ के अधिकारी है, पूरी मनुष्य दर्शनों के अधिकारी अलग अलग माने हैं। परंतु संतों से बातें मिली कि परमात्मा की प्राप्ति अपना कल्याण करेगा अधिकारी सब है, स्त्री हो शूद्र हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी है। केवल उसकी इच्छा चाहिए, उसके से अभिनाशा हो जाती, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, नहीं तो ब्राह्मण को थोड़े भगवान मिल जाएंगे। ये वर्ण का आश्रम तो मर्यादा कर लिया है, अपनी अपनी मर्यादा है, अपने अपने धर्म है, पाल लिए, वो अलग अलग होते हैं, वो हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, ब्राह्मणों के अलग, क्षत्रियों के अलग, ब्राह्मण क्षत्रिय शाम सूर्यनारायण से परंत कर्म नहीं प्रतिबुद्धता नहीं स्वभाव नहीं, गीता में कर्म अलग अलग होता है, स्वभाव जी कर्म नौ धर्म ब्राह्मण के लिए, सात धर्म क्षत्रिय के लिए, तीन धर्म वैश्यों के लिए, एक धर्म शूद्रों के लिए, जितना सोचा उसकी जिम्मेवारी कम थी, जितना बड़ा है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा, ऐसे धर्म बताए स्वाभाविक, तो अपने धर्म का पालन करना सबके लिए ठीक है, दूसरे की जीविका के लिए हो तो वो दूसरे की जीविका नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए पर धर्म को भयावह बताया है। सबका कल्याण हो सकता है सब, अभी से शूद्राचारो पापी से पापी भगवान का भक्त हो सकता है, बताया अभिषेक से पापे भी सर्वे भी पाप कर्म सर्व ज्ञान पशु ज्ञान हो सकता है, भक्त भक्ति हो सकती है, कई मुसलमान भक्त हुए हैं, कई हिंदू भक्त हुए हैं, कई भक्त हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे परमात्मा की तारे, भगवान का भजन करे भक्त हो जाता है, रसगान कितने ऊंचे दर्जे के भक्त हुए मुसलमान थे, छतरी होगी रसगान के वहां उनके दुआ पढ़े जाते हैं, कई भगवान भक्त हो गए, स्त्रियां हो गई, पुरुष भी हो गए, कई भगवान के भक्त सब हो सकते हैं। तय माँ की गोदी सब बालकों के लिए खुली है, आओ बेटा बैठो, दूध पियो, खेलो, माँ है तो भगवान तो तुम्हें माता से पिता तुम्हें व तुम्हें बंधु सगा तुम्हें व तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें व तुम्हें सर्व मम देव देव तुम्हें वो माता माँ है भगवान पिता है भगवान माता राम हो मत पिता रामचंद्र स्वामी राम हो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नानु जाने नहीं वो जाने न जाने सबके लिए भगवान है। भगवान के मिलने के लिए किसी के लिए विरोधवन नहीं है, भगवान के लिए, भगवान के लिए सब खुल गया, आ जाओ सब, सब भगवान के बालक है, आपस में हम अलग अलग है, हमारे कर्तव्य अलग है, धर्म अलग है, पालन करने गए, पर परमात्मा तो तुम्हें प्राप्त हुई है सबको अधिकार, वही ज्ञान हो अभी से शूद्राचार हो ज्ञान भक्ति का शूद्राचारी पापी यहाँ सात तरह के बोध बताए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार तो और स्त्रियां पांच एक दुराचारी एक पापी होनी ये सात आए वहां मानवी पार वैसे ही विश्व पाप योन है पहले पापों के कारण से तो नीच योनि में पशु पक्षी आदि भी हनुमान जी बंदर जामवाना भालू वे भी भक्त हो सकते हैं मन नहीं है मनुष्यों के लिए विशेष अधिकार है इनको विवेक है इस वास्ते पर दूसरे के लिए दुराचारी से दुराचारी भक्त हो सकता है पाप योनि वाले भक्त हो सकते हैं स्त्रियां है वैश्य है शूद्र भक्त हो सकते हैं कुंभ पुण्य ब्राह्मण पुण्य पवित्र ब्राह्मण राजऋषि आजाद ऋषि कहना क्या है ये सात तरह में सब आ जाते हैं दुनिया के कोई जीव जंतु भी पास बाकी नहीं रहता पाप योनि इतना बड़ा शब्द है कि सब पूर्व के पापों के कारण से जो जहां बने वहां से भगवान की प्राप्ति हो सकती है नौवें अध्याय के अंतिम भाग में ये आया है पाप योनि और दुराचारी और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चार और एक स्त्रियां भगवान प्राप्ति में सब अधिकार सबके लिए खुल गए गीता में कहा अपना कल्याण सब कर सकते हैं, क्योंकि सबके सब परमात्मा के अंश है। ऐसा नहीं कि हिंदू तो परमात्मा अंश है, मुसलमान अंश नहीं है, ऐसा नहीं है, ईसाई अंश नहीं है, ये बात नहीं है। भगवान का अंश सब है, साथ साथ परमात्मा का अंश है, सब भीतर से शुद्ध है, बाहर के दोषों से दोषान्वित हुए हैं, सबका कल्याण होता है। कल्याण के तो उत्कर्ष अभिलाषा चाहिए केवल, और दूसरे सदगुण सदा आप ही आ जाएंगे, सब ही केवल इच्छा केवल चाहना कि मेरा कल्याण हो, मेरे को भगवान मिले, मेरे को तत्व ज्ञान हो जाए, ये होना चाहिए, फिर हो जाएगा सब।